तो आप ये थोड़ी देखते कि वो शूद्र है या ब्राह्मण है, वकील है तो आप उसके पास जाओगे और जो वकालत का काम है वो आप कराओगे उससे। उसी प्रकार से गुरु को ये नहीं देखा जाता है कि वो शूद्र है या ब्राह्मण है, क्या है ना। गुरु वो है जो कृष्ण के तत्व को जानता है ना, वही विज्ञान है ना। तो यहाँ प्रभुपाल लिखते हैं, मात्र संसारी विद्वत्त से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता, उसे वो शुद्ध उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। तो वही भगवद्गीता, भगवद्गीता को जानना है यानी विज्ञान को जानना है, कृष्ण तत्व को जानना है, तो क्या चाहिए हमको, सौभाग्य मिलना चाहिए। कैसा? विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य मिलना चाहिए। और उसी को ही भगवान क्या कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः, परंपरा के द्वारा इस प्राप्त हुए ज्ञान को राजर्षियों ने जाना। तो परंपरा के द्वारा ये विज्ञान परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है ना। कोई व्यक्ति अगर ज्ञान को जान भी ले तो विज्ञान को नहीं जान सकता। विज्ञान का मतलब होता है जिसमें जो है संशय दूर हो, और कई प्रकार के ज्ञान में कई प्रकार के संशय होते हैं, है कि नहीं। तो कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है लेकिन उसमें कई प्रकार के संदेह मिले रहते हैं, प्रश्न मिले रहते हैं। और जब तक आप प्रश्न नहीं करते हैं है? और प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं तब तक विज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है ना। इसलिए भगवान ने कहा है विज्ञान प्राप्त करने के लिए तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, तीन चीजें हैं, प्रणाम करो और प्रश्न करो और सेवा करो। तो प्रणाम प्रश्न और सेवा, ठीक नहीं, उपदेक्षण देगा और तुम्हें वो ज्ञान का उपदेश देंगे, है ना। तो भगवद्गीता का उपदेश, तो भगवद्गीता के उपदेश में जो है व्यक्ति को प्रश्न करना जरूरी है, अर्जुन ने प्रश्न किए है कि नहीं। तो इस तरह से जो है विज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास जो अपने अपने संशय होते हैं, अपने अपने प्रश्न होते हैं। तो प्रभुपाल लिखते हैं आगे, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। हाँ, तो यही मतलब, विशुद्ध भक्ति का मतलब इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाने से अगर वो संतुष्ट है तो उसको फिर अमृत प्राप्त होगा, रस प्राप्त होगा, उसको फिर रस प्राप्त होगा, भक्ति का रस प्राप्त होगा। आगे, अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। अनुभूत ज्ञान का मतलब विज्ञान, जब ज्ञान का आपने अनुभव किया तो वो विज्ञान हो जाता है और वो पूर्ण होता है, पूर्ण बनता है। आगे, आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है। अब आगे जो है कूटस्थ की व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा अभी तक इसकी चर्चा की। अब कूटस्थ है, कूटस्थ का मतलब क्या है, जो स्थिर रहे। कूटस्थ, कूट, कूट का मतलब होता है छिपा हुआ, इस माने स्थित, कोई छिपी हुई बात में वो स्थित है, उसको कूटस्थ बोलते हैं। मतलब सामान्य व्यक्ति की जानकारी में जो नहीं है, ऐसी बातें जो है ना जब कोई व्यक्ति अपने मन में रखता है ना, तो उसको बोलते हैं कूटस्थ। तो कृष्ण के साथ जो है अपना कोई दिव्य संबंध है जो हर व्यक्ति के सामने बताया नहीं जा सकता, तो उसको जो है कूटस्थ होना पड़ता है। कूट नीति के भी मतलब यही है कि आप बोलते कुछ और मन में कुछ रखते हो, उसको कूट नीति बोलते हैं, कपट भी बोलते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर भी कूटस्थ का मतलब यही है, एक प्रकार से उसके अंदर कपट रहता है, क्योंकि सामान्य लोगों के बीच में ये बातें हमेशा नहीं बताई जा सकती हैं। अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना ये अपराध है, तो हर व्यक्ति हर समय इन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कूटस्थ। गीता में भी भगवान ने कहा है कि उपदेश किसको नहीं बताना है, इदम तेना तपस्काय, जो तपस्वी नहीं है उसको नहीं बताना, ना भक्ताय कदाचन, जो भक्त नहीं है उसको नहीं बताना, न चासु श्रोसवे वाच्यम, उसको नहीं बताना, जो शुश्रूषा ना करे सेवा ना करे उसको नहीं बताना, न जमाम यो भिसुयति, और जो मेरी निंदा करे उसको नहीं बताना। तो इसलिए कूटस्थ का मतलब यही है। हाँ, ये 18वें अध्याय का है। कितने श्लोक है? इदम तेना तपस्का है 69, 67, हाँ 67 हो सकता है। इदम तेना तपस्का है ना। तो कूटस्थ का यही मतलब है कि वो हर समय तो बताने की स्थिति में नहीं होता वो, है कि नहीं? तो कूटस्थ का मतलब यही है कि अपने उस कृष्ण के साथ अपने संबंध में स्थित है और वो दृढ़ है, संकल्प में दृढ़ है ना। तो जब ज्ञान विज्ञान में तृप्त हो जाता है व्यक्ति, तब वो कूटस्थ जाता है, कूटस्थ दृढ़ हो जाता है। फिर किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाहरी विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है, ठीक है ना। तो भ्रमित और मोहित अगर होता रहे, अगर विज्ञान नहीं है उसको, खाली ज्ञान है ना। आगे केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है। अब विजितेंद्रिया की व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी। विजितेंद्रिया आत्म संयमी, विजित इंद्रिय, जितेंद्रिय और विजित इंद्रिय। वी का मतलब हुआ विशेष रूप से, जिसने इंद्रियों को जीत लिया। एक तो कोई व्यक्ति इंद्रियों को जीतता है और दूसरा है इंद्रियों को विजित कर लेता है, विशेष रूप से जीत लेता है। इसका मतलब यही है कि उसकी इंद्रियां जो है आप भोगों से बिल्कुल विरक्त हो गई, ठीक है ना। इंद्रियों को जीतने का तो मतलब यह है कि इंद्रियों में भोगों की इच्छा है और वो फिर भी उनको बस में करता है, लेकिन इंद्रियों को विशेष रूप से जीतने का मतलब यह है कि इंद्रियों के अंदर भोगों की इच्छा ही समाप्त हो गई, क्योंकि इंद्रियां शुद्ध हो गई। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो उनके अंदर भोगों की इच्छा नहीं रहती है, है ना। तो वही विज्ञान है, क्योंकि इंद्रियों को कृष्ण रस प्राप्त हो रहा है। इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के नाम रूप गुण और लीलाओं का क्योंकि आस्वादन हो रहा है, तो इसलिए फिर इंद्रियां उसकी विजित हो गई। जैसे प्रबोधन सरस्वती का एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं, कैवल्यम नरकाय थे त्रितस्पुर आकाश पुष्पाय थे दुर्दानेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्टाय थे विश्वम पूर्ण सुखाये थे विधि महेंद्रादि कीटाये थे। विश्वम पूर्ण सुखाये थे विधि महेंद्रादि कीटाये थे यत कारुण्य कटाक्ष वैभव बताम गौरम तम स्तुतम। तो भगवान चैतन्य की जो है ना करुणा का कटाक्ष किसी को प्राप्त हो जाए तो उसके लिए क्या होता है, कैवल्यम नरकाये थे। कैवल्य मोक्ष तो नरक के समान लगता है। कैवल्य मोक्ष में कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का आस्वादन नहीं होता है ना, तो वो नरक के समान लगता है। कैवल्यम नरक आए थे त्रितस्पुर आकाश पुष्प आए थे। त्रितस्पुर का मतलब है स्वर्ग, आकाश पुष्प के समान है। स्वर्ग का जो सुख है ये तो वास्तव में आकाश पुष्प के समान एक कल्पना है, स्वर्ग में कोई सुख नहीं है। जैसे आकाश में कोई पुष्प होता नहीं, फूल जितने होते हैं जमीन से निकलते हैं, आकाश से थोड़ी निकलते हैं कोई फूल। तो आकाश फूल के समान स्वर्ग का जो है ना ये कल्पना है कि सुख है स्वर्ग में, तो वो जानता है कि स्वर्ग में कोई सुख है ही नहीं, केवल एक कल्पना है सुख की, है ना। आकाश पुष्प आए थे दुर्दांत इंद्रिय काल सर्व पटली प्रोत्थात दंष्ट आए थे। दुर्दांत है इंद्रिय, ये इंद्रियां जो है दुर्दांत है, मतलब बहुत मुश्किल है इनको जीतना, बस में करना। हा? काल सर्प पटली, ये काल सर्प के समान इंद्रियां, मतलब जो विषैले सर्प के समान इंद्रियां। लेकिन प्रोत्खात दंश आए थे, इनके विष के दांत ही टूट गए हैं। जैसे विषैला दांत हो, विषैला सर्प हो और उसके विषैले दांत तोड़ दो आप, तो वो चाहे जितना भी काटे कुछ खतरा नहीं है कि नहीं। तो इंद्रियों के जो विषैले दांत ही निकल गए हैं, विषय की जो इच्छा है वो समाप्त हो गई इंद्रियों में, तब इंद्रियों को बस में करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। तो उसको कहते हैं विजित इंद्रिया, प्रोत्खात दंश आए थे। विश्वम पूर्ण सुख आए थे, तो संपूर्ण विश्व जो है पूर्ण सुख से भरा है उसके लिए, सभी दिशाएं सुख से भरी हैं उसके लिए। विश्वम पूर्ण सुख आए थे विधि महेंद्र आदि कीट आए थे, और ब्रह्मा और इंद्र भी उसके लिए कीड़े हैं। ब्रह्मा और इंद्र का पद भी उसके लिए कीड़े जैसा है, ब्रह्मा का पद इंद्र का पद भी नहीं पाना चाहता वो, है ना। अमेरिका की बात छोड़ो, है कि नहीं, ब्रह्मा और इंद्र का पद भी उसके लिए कीड़े के समान है। विधि महेंद्र आदि कीट आए थे, यद कारण कटाक से वैभव बताऊं, तो जिनके पास में वो संपत्ति आती है चैतन्य महाप्रभु के करुणा कटाक्ष की संपत्ति मिल जाती है, एक चैतन्य महाप्रभु के करुणा की दृष्टि अगर मिल गई तो वो इतनी बड़ी संपत्ति है उस व्यक्ति के पास कि उसको फिर ब्रह्मा और इंद्र भी कीड़े के समान लगते हैं। इतना वो व्यक्ति संपन्न हो जाता है कि ब्रह्मा और इंद्र का पद भी उसकी कीड़े के समान है। इतनी संपत्ति उसके पास आ जाती है, इतना संपत्तिवान कि एक कृपा दृष्टि चैतन्य महाप्रभु अगर मिल गई उसको, तो ये जो है श्लोक है। तो ये इसी को कहते हैं कि तृप्तात्मा विजितेंद्रिया, विजितेंद्रिया। तो यहां प्रभु लिखते हैं आत्मसंयमी, केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसंयमी होता है क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है, वह दिव्य होता है। हाँ, तो यहां युक्त विजितेंद्रिया के बाद क्या है, युक्त, युक्त इति चते, तो युक्त, तो यहां प्रभु कहते हैं वह दिव्य होता है युक्त, क्योंकि कृष्ण से जुड़ा हुआ है। युक्त का मतलब जुड़ा हुआ, तो कृष्ण किससे जुड़ा है, कृष्ण से जुड़ा हुआ है, वह दिव्य होता है क्योंकि उसे संसारी विद्वत्ता से कुछ लेना देना नहीं रहता है। हाँ, अब संसारी विद्वत्ता क्या है, प्रभुपाद जी उसी को कहते हैं सोना, जो कि सोने के समान जो है, बहुत जो है ना, पुस्तकें ऐसी हैं भगवद गीता की, बहुत सी टीकाएं हैं जो मायावादी हैं, और लोग जो है ना उनको पढ़ते हैं और सोचते हैं कि ये असली सोना है, रत्न है, बड़ा रत्न है, उसके लिए कंकड़ पत्थर के समान है। भगवद गीता की इतनी मोटी मोटी टीकाएं हैं, 5-5 किलो की, 10-10 किलो की है ना टीकाएं हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, कंकड़ पत्थर के समान है, और लोग सोने की तरह उसको जो ना रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यहां समलोष्टास्म कांतना का प्रभुपाद जी अर्थ बताते हैं कि प्रभुपाद लिखते हैं उसके लिए संसारी विद्वत्ता तथा मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। ये नहीं तो अगर समलोष्टास्म कांतना का मतलब ये समझा जाए कि भाई मिट्टी पत्थर और सोने में समान होता है, फिर तो कोई आपसे कहेगा कि भाई ठीक है मिट्टी पत्थर सोने में अगर आप समान हो तो अपनी जेब के जितने पैसे मुझे दे दो और बदले में मिट्टी ले लो। मिट्टी पत्थर सोने में अगर समान हो आप फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मिट्टी पत्थर सोना समान नहीं है, क्योंकि जिस चीज का कृष्ण की सेवा में जितना उपयोग है उसका उतना ही महत्व है। मिट्टी पत्थर सोना ऐसे नहीं समान होता है। जैसे कि एक हंसी वाली कहानी है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। एक अंधेर नगरी है और वहां का राजा है चौपट, उसके राज्य में 2 पैसे किलो में भाजी भी है और 2 पैसे किलो खाजा भी है। खाजा मतलब बहुत महंगा होता है, दूध का बना हुआ है ना, मतलब 2 पैसे किलो में लोहा भी सोना भी सब कुछ 2 पैसे किलो, हर चीज 2 पैसे किलो। आप सुने ना, तो ये तो जो है मायावादी है। मायावादी कहते हैं कि सब बराबर है, सब है ना एक है, तो ऐसा नहीं है। सोने का जो है ना अपना महत्व है, और सोने को जो है भगवान की सेवा में लगाया जाता है कि नहीं, सोने के आभूषण बनाए जाते हैं, तो इस तरह से हर चीज का उपयोग है। और ऐसा ये व्यवहारिक नहीं है कि सोना मिट्टी पत्थर सोना को जो है हम बराबर, लेकिन हाँ हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए इस दृष्टि से समान है। मिट्टी को पत्थर को सोना को जो भी चीज है ना कृष्ण की सेवा में लगाई जाती है तो वह समान है इस दृष्टि से। लेकिन फिर सोने का अगर मूल्य ज्यादा है तो सोने का महत्व है, क्योंकि सोने से हम जो है बहुत ही चीजें भगवान की सेवा में प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि भाई वो व्यक्ति जो है जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है उसके लिए मिट्टी पत्थर सोना समान हो जाता है, ऐसा नहीं है। जो मायावादी हैं वो जब ऐसा बोलते हैं तो मध्वाचार्य ने उनके विरोध में कहा है कि भाई मायावादी भाई साहब, आपके जेब में जितना भी पैसा है वो आप मुझे दे दो, क्योंकि मुझ में आप में कोई अंतर नहीं है। अगर मुझ में आप में कोई अंतर नहीं है तो आपकी जेब में जितना पैसा है वो आप मुझे दे दो, है ना। तो ऐसा नहीं है। युक्त वैराग्य का मतलब यही होता है कि हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए बिना अपनी आसक्ति के। अनासक्त विषयान यथारम उपयुंजता है, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुचित। तो कृष्ण के जो ना संबंध में हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, इसको युक्त वैराग्य कहते हैं, है ना। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न है? उनका प्रश्न है कि विज्ञान में तृप्ति कैसे हुआ जा सकता है। तो हमने यही बताया कि कृष्ण के नाम रूप गुण और लीलाओं में वो आस्वादन करता है, है ना। तो वो अमृत है, पूर्णामृतास्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है, है ना। तो जहां पूर्ण अमृत का आस्वादन है तो ये मृत, बाकी जो संसार के विषय है वो मृत है कि नहीं, तो उसमें फिर उसकी रुचि नहीं होगी। तो जो व्यक्ति कृष्ण की भगवद गीता को में आनंद लेता है, है ना, तो फिर वो जो है ना वो उधर नहीं जाएगा, फिल्मों को देखने नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो ये आप अनुभव करो कि हाँ, आप में कुछ अंतर आ रहा है। पहले आपका आकर्षण था भौतिक सुखों के प्रति, तो भी आकर्षण घट रहा है कुछ, है ना।
मतलब जो थोड़ा थोड़ा भी कृष्ण की भक्ति करे तो धीरे धीरे से उसका मन इन सभी से हट
जाता है। तो इस तरह से हर व्यक्ति को अनुभव करना चाहिए। जो भी व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा है ना, तो फिर चार नियमों का पालन करने में फिर कितनी आसानी हो रही है ना। उसका जो मन है, उसकी दृष्टि है, वो अब आकर्षित नहीं हो रही है संसार की तरफ। आकर्षित हो भी रही है तो कुछ घट रहा है ना। 1% अब आकर्षण घटा, 2% आकर्षण घटा, तो ये आपको जानना है। तो यही इसको कहते हैं विज्ञान। तो आपको देखना है अपने अंदर कि हाँ ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो ये चीजें जो है वैज्ञानिक तरीके से हर व्यक्ति को अपने अंदर देखनी चाहिए, है? कि पहले मेरा जीवन कैसा था, पहले मेरे विचार कैसे थे, पहले कितना तक मेरे अंदर भोगने की इच्छा थी, है कि नहीं, मालिक बनने की इच्छा थी, है? अभी मैं कितना इसमें संतुष्ट हो रहा हूं कि ठीक है मैं छोटा हूं और कृष्ण का दास हूं, इसमें मैं संतुष्ट हूं। मुझे नहीं बनना है बड़ा मालिक, नहीं बनना है मुझे कोई बहुत बड़ा आदमी, नहीं बनना है मुझे कोई बहुत बड़ा एक्टर, नहीं बनना है फिल्मी अभिनेता, नहीं बनना है क्रिकेट प्लेयर, नहीं बनना है कि नहीं। तो आपके अंदर जो है जो इच्छाएं थी वो घट रही हैं, आप देखो, तो उसको जो है ना विज्ञान कहते हैं। आप जो है हरे कृष्ण का अगर जाप करते हैं बड़ी सावधानी से, तो आपको वो अनुभव करना है, क्योंकि ये भगवद गीता एक विज्ञान है। प्रत्यक्षावगमम, नवे अध्याय में भगवान ने कहा है प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष अनुभव होता है इससे, है ना। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो जाप है ये प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है, और पूरे विश्व में जो है ये दिखाई दे रहा है इसका परिणाम, कि हरे कृष्ण के जाप से लोगों का जीवन पवित्र हो रहा है। तो आप देख सकते हो, अमरीकी सरकार जो है करोड़ों डॉलर खर्चा कर रही थी, लेकिन नशा नहीं छूट रहा था लोगों का। और हरे कृष्ण के आंदोलन में जो आए तो उनका नशा छूट गया, है कि नहीं। तो कोई सोचता भी नहीं था कि वहां विदेश में जो है ना लोग इतने शुद्ध होंगे, इतने पवित्र होंगे, और इतने कड़ाई से पवित्रता के नियमों का पालन करेंगे, है ना। तो लोग सोच नहीं सकते, लेकिन ये हो रहा है, और कितना आश्चर्य। बल्कि कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल असंभव है, वो लोग सोचते हैं कि ये लोग पागल हो चुके हैं, ये लोग बिल्कुल पागल हैं, बोलते भी हैं। फिर इनके जीवन क्या सुख है, अगर आप नशा नहीं करते, मांसाहार नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, है ना, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को कोई सुख नहीं मिल रहा है।
लोग कहते हैं कि दुनिया में आए तो एंजॉय करना चाहिए,
हाँ, आप समझे ना, क्योंकि वो समझ नहीं सकते। या नशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, तो जो उनके लिए रात है वो हमारे लिए दिन है,
है ना?
है ना? और जो उनके लिए दिन है वो हमारे लिए रात है, ठीक है? तो समझ नहीं सकते, दिन रात का अंतर है। जिसमें हमें सुख प्राप्त हो रहा है और असीमित सुख प्राप्त हो रहा है वो उनके लिए बिल्कुल नीरस है ना, बेकार है उनके लिए, वो नहीं जानते उस चीज को, है कि नहीं? तो इस तरह से जो है विज्ञान का मतलब यही होता है कि आप इस, आपका जो है ना कितना उसमें आप जो है विरक्त हो रहे हैं। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता धन्य त्यासु वैराग्यम ज्ञानम ते रहेतुकम। भगवान में जो है अगर भक्तियों का प्रयोग किया जाए तो धन्य त्यासु वैराग्यम, तो तुरंत ही वैराग्य उत्पन्न करती है भक्ति का योग जो है, भक्ति को जोड़ा जाए भगवान के साथ में तो तुरंत ही भक्ति देवी वैराग्य उत्पन्न करती है और ज्ञान उत्पन्न करती है कि नहीं? वैराग्य का मतलब वही है कि राग जो है दूर होता है कि नहीं? तो राग द्वेष कितना भरा है, रजोगुण के कारण राग द्वेष होता है और रजोगुण जो है जैसे दूर होता है तो वो राग द्वेष जो ना मिटता जाता है उन चीजों में। तो ये आपको खुद ही देखना है। और कोई प्रश्न किसी का? कृष्ण प्रसाद खाना भक्ति का प्रारंभ ही है, कृष्ण प्रसाद खाने से। इसलिए प्रभुपाद जी ने जब आंदोलन शुरू किया था अमेरिका में तो ये दो ही कार्य किए, कृष्ण का प्रसाद खिलाते थे और हरे कृष्ण का कीर्तन कराते थे, है कि नहीं? तो ये जो है तरीका है। जैसे मछली को फंसाना होता है, है? तो तो उसके द्वारा ही है ना, तो ये प्रसाद भी जो ना फंसाने वाली चीज है। तो प्रभुपाद जी जो है, प्रभुपाद जी बहुत सी मछलियां फंसाई अमेरिका में जाकर के, प्रसाद खिला खिला करके, है ना? तो प्रसाद के चक्कर में फिर उन्होंने जो है सब छोड़ दिए, वो जो है जो मांसाहार है ना उसका फिर स्वाद खत्म हो गया उनका। कल तो गौरांगा प्रभु बता रहे थे इस्कॉन बुलेट जो प्रभुपाद जी गुलाब जामुन जो बनाई, तो उन्होंने रसगुल्ला, तो उन्होंने जो है ना गुलाब जामुन थी, तो वो जो है गोलियां हैं वो छोटी छोटी गोलियां थी वो, तो उन्होंने मंदिर के बाहर ही रखवा दी थी कि जिसकी जब इच्छा हो तो खाए, तो जो जाना चाहता है तो अब तो मजा नहीं आ रहा है मैं चला जाऊं, तो जाना चाहता तो फिर वो उसको वो देखता है कि ये गोलियां हैं तो ये तो खा लूं मैं तो वो खाता है, तो फिर खाता है सोचता तो थोड़ा और खा लूं, फिर थोड़ा और खा लूं, है ना? फिर कोई कहता है क्यों जा रहे हो, तो सोचता है हाँ फिर ठीक है नहीं जाऊंगा मैं तो दरवाजे में रख दी थी जिससे कि मतलब कोई जाए तो इसके इसमें फंस जाएगा वो, है ना? तो प्रसाद खिला करके। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि जो भक्ति देवी जो ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न करती है तो वो ज्ञान और ये जो विज्ञान है इसमें क्या अंतर है? हाँ, ये ज्ञान के साथ जो वैराग्य है ना, तो ज्ञान के साथ जो वैराग्य है ये भक्ति उत्पन्न करती है, इसी को विज्ञान कहते हैं। यही भक्ति का विज्ञान है। भक्ति के विज्ञान में क्या होता है कि जो अनुभूति है ना, कृष्ण की अनुभूति भी होती है और भौतिक संसार से विरक्ति भी होती है, दोनों चीजें विज्ञान में ये दोनों चीजें होती हैं। कृष्ण की अनुभूति होती है, और भौतिक संसार से अरुचि भी होती है, दोनों चीजें हैं भक्ति में। भक्ति ही परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र जैसे त्रिक एक काला, ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं, भक्ति परेशानुभव विरक्ति। तो भगवान की अनुभूति होना और भौतिक संसार से विरक्ति होना है ना, भगवान की भक्ति और भगवान की अनुभूति और विरक्ति, ये तीनों एक साथ होती हैं। जैसे छुद पायोन घासम, एक एक ग्रास आप खाते हैं तो क्या होता है, वो श्लोक है इस तरह का, तुष्टि पुष्टि छुद पायोन घासम, तुष्टि होती है और पुष्टि होती है, पुष्टि का मतलब है कमजोरी दूर होती है ना, और क्षुधा निवृत्ति और भूख समाप्त होती है कि नहीं? तुष्टि होती है, स्वाद भी मिल रहा है बहुत अच्छा आपको, तो भक्ति का स्वाद मिलता है ना? और पुष्टि का मतलब शरीर में बल भी बढ़ता है और क्षुधा निवृत्ति और भूख भी समाप्त होती है ना, तो तुष्टि का मतलब है स्वाद मिलता है यानी वो भक्ति है, है ना। और पुष्टि का मतलब बल मिलता है, तो वह अनुभूति भगवान की अनुभूति होती है। और अक्षुधा निवृत्ति यानी विरक्ति, भौतिक संसार से विरक्ति, तीनों एक साथ होती है। जब आप भूखे हैं तो कमजोरी भी आती है बहुत ज्यादा, भूख भी लगती है बहुत ज्यादा, है ना, और दिमाग भी बहुत परेशान रहता है कि नहीं। तो तीनों चीजें जो है दूर होती हैं, है ना। तो यही विज्ञान कहलाता है। और कोई प्रश्न किसी का? बहुत अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा कटाक्ष है, यानी कृपा की एक दृष्टि अगर मिल जाए तो ब्रह्मा इंद्र का पद भी कीड़े के समान लगेगा। किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की कृपा की दृष्टि प्राप्त की जाए? चैतन्य महाप्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए आपको उनके दास के दास के दास का दास बनना चाहिए, है ना। मतलब प्रभुपाद जी के आदेश का पालन करना चाहिए, लेकिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते हैं कि आप सीधे जो है ना उनकी कृपा प्राप्त करो। तो जो है जो उनके प्रतिनिधि हैं और उनके जो भक्त हैं, है, उनके सेवक हैं, उनको प्रसन्न करो, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी जो है चैतन्य महाप्रभु की जो है संदेश का प्रचार करने वाले हैं, है ना, उनके आदेश का पालन करो। प्रभुपाद जी ने जो आदेश दिया है उसका पालन करो। प्रभुपाद जी चाहते हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करो। प्रभुपाद जी ने यही कहा कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद तुम लोगों का मेरे प्रति कितना प्रेम है ये पता चलेगा। कैसे? कि आप लोग कितना एक दूसरे के साथ सहयोग करते हो, कितना आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हो। अगर आप एक दूसरे से जुड़ेंगे तो फिर शक्ति आएगी, लेकिन संघे शक्ति कल हो जाएंगे, है ना। तो एक दूसरे के साथ सहयोग करना, एक दूसरे के साथ जुड़ना, इससे जो है शक्ति आएगी। जैसे कि एक शरीर में जो है ना आंखें का अलग काम है, कान का अलग काम है, सिर का अलग काम है, मुंह का अलग काम है, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, है कि नहीं। आंखें कुछ देखती हैं तो मुंह उसके अनुसार बोलता भी है कि नहीं, और कान कुछ सुनते हैं तो उसके अनुसार मुंह बोलता है, हाथ उसी प्रकार से काम करते हैं जैसे कान सुनते हैं। तो एक दूसरे का सहयोग है ना, है ना। तो फिर क्या है कि पूरी शक्ति है, पूरी शक्ति आती है। तो उसी प्रकार से जो है भक्तों अलग अलग सेवाओं में लगे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे का सहयोग करें, किसी का महत्व कम नहीं है, है ना। लेकिन आंखें कहेंगी नहीं मेरा महत्व ज्यादा है, पैरों का महत्व कम है, है कि नहीं। और वो अगर सहयोग ना हो, है कि नहीं, तो फिर जो ना शक्ति नहीं रहेगी, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं। आंखें देखती हैं तो कहीं खतरा है तो पैर भागते हैं, है कि नहीं। तो सहयोग है ना, इसी प्रकार से सुरक्षा होती है और उसी में ही शक्ति आती है। तो इसी प्रकार से जो है अलग अलग सेवाएं हैं सब भक्तों की। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कहे कि नहीं नहीं इनकी सेवा कम है, ये तो प्रसाद बनाते हैं, है ना, और मैं प्रचार करता हूँ तो ये जो है ना बेकार है, मैं ज्यादा बड़ा हूँ, ऐसा नहीं। ये प्रचार का आंदोलन है तो हर कोई प्रचार के आंदोलन में भाग ले रहा है और हर व्यक्ति का महत्व है। जिस तरह से सहयोग किया जाए एक दूसरे के साथ में मिल कर के, चैतन्य महाप्रभु की कृपा दृष्टि मिलेगी। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। जय 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। जय हो।